उसका प्लान तो उसके हिसाब से पूरी तरह से बुलेटप्रूफ था, पूरी तरह से तैयार था, लेकिन अरमान सिंघानिया ने तो पूरी बाजी पलट चुकी थी। और अब प्रियंका को खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि अगर ना तो वो इस तरह का कोई प्लान बनाती और ना ही इस तरह से उसे सिंघानिया मेंशन से निकलना पड़ता, क्योंकि सिंघानिया मेंशन में महल जैसे घर में रहने की उसकी आदत हो चुकी थी। लेकिन अब प्रियंका समझ चुकी थी कि अब तो वो सपने में भी वहां नहीं जा सकती है, और प्रियंका ने झल्लाते हुए अपने बालों को नोच लिया और सीधा अपने कमरे में जाकर जोरों से दरवाज़ा पटक दिया। वहीं दूसरी ओर आस्था अरमान का हाथ थाम कर एक गहरी नींद में सो गई थी, क्योंकि आस्था को डॉक्टर ने ट्रीटमेंट दिया था, जिसकी वजह से वो काफ़ी दवाइयों के नशे में सो रही थी, और साथ ही साथ आस्था प्रेग्नेंट थी तो उसे वीकनेस भी महसूस हो रही थी। अब आस्था को इतने प्यार से सोता हुआ देखकर अरमान ने आस्था का हाथ धीरे से छोड़ा और उसके पेट को बड़े ही प्यार से चूम लिया। अरमान आस्था के पेट को बड़े ही अजीब तरीके से देख रहा था। कहीं ना कहीं अरमान का अंश इस दुनिया में आने वाला था, तो इसकी खुशी उसकी नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी थी। वहीं दूसरी ओर अबीर सिंह राठौर ने अपने पिता को पूरे रिस्पेक्ट के साथ विदा कर दिया था, और साथ ही साथ अमरेंद्र जी को भी इस बात की खुशी थी कि अरमान और अबीर के बीच में अब सारी दुश्मनी खत्म हो गई है, और जिस लड़की को लेकर दुश्मनी थी, यानी आस्था को लेकर दुश्मनी थी, वो भी अब अबीर की दोस्त बन गई है, तो वो भी अब हंसी खुशी वहां से वापस चले गए थे। लेकिन अबीर सिंह राठौर इस वक्त आस्था की बड़ी सी फोटो के सामने खड़ा हुआ था और उसे घूर रहा था। अमरेंद्र जी यानी अपने पिता के सामने अबीर सिंह राठौर ने ड्रामा किया था। भले ही उसने आस्था से अरमान के सामने दोस्ती कर ली थी, लेकिन वो समझ चुका था कि अरमान से दुश्मनी करके वो आस्था के करीब बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाएगा, इसीलिए उसने थोड़ा सा झुककर उससे दोस्ती का ड्रामा किया था, साथ ही साथ उससे माफ़ी मांगने का भी ड्रामा किया था ताकि वो आस्था के करीब जा सके। इसीलिए उसने दोस्ती के बहाने अब सीधा सीधा सिंघानिया मेंशन में एंट्री लेने के बारे में सोचा था, कि वैसे भी उसने सुना था कि प्यार की शुरुआत दोस्ती से ही होती है। अगर वो एक बार आस्था से दोस्ती कर लेता है तो आसानी से आस्था को वो अपना बना लेगा और धीरे धीरे उसके दिल में अपने लिए प्यार जगा देगा। तो कहीं ना कहीं इसी सोच के साथ अबीर शैतानी मुस्कुराहट के साथ आस्था की फोटो को देख रहा था। वहीं दूसरी ओर अरमान के सामने क्योंकि सारा मामला जो कुछ भी हुआ था वो सब उसे समझ में आ चुका था, लेकिन अबीर सिंह राठौर का आस्था से दोस्ती करना उसे कुछ खास पसंद नहीं आया था। आखिरकार अरमान सिंघानिया था, अच्छे से लोगों की फितरत से वाकिफ था, साथ ही साथ अबीर की आंखों में उस वक्त फरेब उसने देख लिया था और वो समझ चुका था कि अबीर जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। लेकिन फिलहाल क्योंकि उसने अपने पिता के सामने आस्था से दोस्ती की थी तो इसीलिए अभी अरमान उसे कुछ नहीं कहना चाहता था, जब तक अबीर उसकी बीवी आस्था के बारे में कुछ गलत नहीं सोचेगा और उसे केवल एक अपना अच्छा दोस्त मानेगा, तब तक अबीर जिंदा था। कहीं ना कहीं ये सोचते हुए अरमान आस्था के पेट को बार बार चूमे जा रहा था। आस्था नींद में हल्का सा कसमसाने भी लगी थी, लेकिन अरमान ने आस्था के पेट को चूमना बंद नहीं किया था। ऐसा लग रहा था कि अरमान आज ही बस पेट के अंदर से ही अपने बच्चे को भी चूम लेना चाहता था। अरमान बड़ा ही वियर्ड सा बर्ताव कर रहा था, एकदम पागल सा वो दिखाई दे रहा था, लेकिन उस वक्त उसे देखने वाला वहां कोई नहीं था। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव इस वक्त अपने कमरे में मौजूद था और खाली खाली आंखों से वो छत की सीलिंग को घूर रहा था। ध्रुव के चेहरे पर आज एक अजीब सी उदासी थी। फ्लैशबैक, क्योंकि ध्रुव सर्जरी करने के लिए अस्पताल में गया था और रात को वहीं रुका था, तो रात के करीब 2 से 3 बजे अचानक किसी ने उसका दरवाजा बड़े ही बुरे तरह से खटखटा दिया था। तब ध्रुव गुस्से से दरवाजा खोलने के लिए उठा था और दरवाजे पर अस्पताल के बड़े बड़े डॉक्टर को देखकर ध्रुव हैरान था और कन्फ्यूजन से बोला कि आप सब इस तरह से यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ और इस तरह से दरवाजा खटखटाने का क्या मतलब है। तभी वो डॉक्टर ध्रुव से माफी मांगते हुए बोले कि मिस्टर ध्रुव, प्लीज आप हमें माफ कर दीजिए, लेकिन सिचुएशन ही कुछ ऐसी आ गई थी कि हमें आपको इस वक्त डिस्टर्ब करना पड़ रहा है। हमने आपको जिस सर्जरी के लिए बुलाया था, आप जानते हैं कि वो लड़की अपने पिता को यहाँ से लेकर चली गई थी, लेकिन वो एक बार फिर अपने पिता को वापस यहाँ लेकर आई है, क्योंकि जब वो अपने पिता को लेकर यहाँ से गई उसके पिता की हालत फिर से बिगड़ने लगी और फिर से उसे अस्पताल में वापस आना पड़ा। अब ध्रुव को खुद गुस्सा आ रहा था उस लड़की पर, जिस लड़की को उसने अभी तक देखा भी नहीं था। ध्रुव सोच रहा था कि कोई लड़की इतनी ज्यादा बेवकूफ कैसे हो सकती है, अपने पिता की सेहत को लेकर वो इस तरह से कैसे खिलवाड़ कर सकती है, आखिरकार चल क्या रहा है इस लड़की के दिलो दिमाग में। तब डॉक्टर बोले कि देखिए अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है और उसे उसके पिता की सर्जरी हमें अभी आधे घंटे के अंदर अंदर शुरू करनी होगी, तो प्लीज सर आप रेडी हो जाइए सर्जरी के लिए। अब जैसे ही डॉक्टर ने ये कहा, ध्रुव ने उन्हें अपनी गर्दन हिलाकर सहमति दे दी थी और खुद थोड़ा सा फ्रेशअप होकर वो बाहर आ गया था। ध्रुव ने कैजुअल कपड़े पहने थे। अब जैसे ही वो बाहर आया तो उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। ध्रुव हैरानी से उस लड़की को देखने लगा था। ये वही चेहरा था जिसे ध्रुव डेस्परेटली खोलना चाहता था, लेकिन ये चेहरा आज उसकी आंखों के सामने था। वो चेहरा किसी और का नहीं बल्कि डिम्पल का था। डिम्पल ध्रुव की क्लासमेट थी और उसी के साथ पढ़ा करती थी। ध्रुव को पहली नजर में ही डिम्पल को देखते ही उसे प्यार हो गया था। डिम्पल का नाम डिम्पल इसलिए था क्योंकि उसके दोनों कालों पर बड़े से डिम्पल पड़ा करते थे और जब वो मुस्कुराती थी बड़ी ही प्यारी और खूबसूरत लगती थी। अब डिम्पल को अपने सामने देखने के बाद ध्रुव के पैरों के तले से जमीन खिसक चुकी थी और उसे वो दिन याद आया जब उसने डिंपल को 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे वाले दिन सबके सामने प्रपोज किया था और डिंपल ने उसकी बड़ी बहरनी से बेइज्जती कर दी थी, क्योंकि उस वक्त ध्रुव का बैकग्राउंड कुछ खास अच्छा नहीं था और डिंपल के ख्वाब कुछ ज्यादा ही बड़े थे। डिंपल बड़े से बड़े अमीर से अमीर लड़के से दोस्ती करना चाहती थी, उससे शादी करना चाहती थी ताकि उसका फ्यूचर एकदम ब्राइट हो, और उसने बड़ी बुरी तरह से हजारों स्टूडेंट के सामने ध्रुव की बेइज्जती कर दी थी। उस वक्त ध्रुव, जो कि काफी ज्यादा पढ़ाई किया करता था, वो अपने चेहरे पर एक बड़ा सा चश्मा लगाकर रखा करता था जिससे वो थोड़ा सा बैकवर्ड दिखाई दिया करता था। उस वक्त डिंपल ने ध्रुव के चश्मे को लेकर और उसकी पर्सनैलिटी को लेकर उसका बड़ा ही मजाक उड़ाया था, और डिंपल ने कुछ बातें कही थी कि तुम जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाओगे, इसी तरह से अपनी जिंदगी में कीड़े के जैसे रेंगते रहोगे, तुम्हारा कभी कुछ नहीं हो पाएगा, और तुमने क्या सोचा कि तुम कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की डिंपल को अपना बनाओगे, हाँ डिंपल को फंसा लोगे, ये तुम सपने में भी नहीं सोच सकते, डिंपल तुम्हारी पहुंच से उतनी दूर है, समझे तुम। और साथ ही साथ उसने एक चांटा ध्रुव के मुंह पर खींच कर मारा था। वो दिन था और आज का दिन है, ध्रुव आज तक डिंपल को भुला नहीं पाया था। हालांकि उस दिन के बाद से उसे डिंपल से बेहद नफरत हो गई थी, लेकिन उसने अपनी जिंदगी में जब से प्यार को जाना था, जब से प्यार को समझा था, सिर्फ और सिर्फ डिंपल से ही प्यार किया था। दिन रात मेहनत करके अपनी मेहनत के बलबूते पर ध्रुव ने बड़ी ही कम उम्र में वो मुकाम हासिल किया था जिसे हासिल करने के लिए लोगों की उम्र खत्म हो जाती है।
वेल, डिंपल को वहां देखकर ध्रुव चौंक गया और फटाफट से वो अब सीधा ओटी रूम की तरफ बढ़ने लगा था। वहीं डिंपल तुरंत ध्रुव के आगे आ गई। उसने ध्रुव को नहीं पहचाना था क्योंकि इन सब बातों को पूरे 5 साल हो चुके थे। अब जैसे ही डिंपल ने ध्रुव को वहां देखा तो वो चीखते हुए ध्रुव की ओर देखते हुए बोली कि कहां मर गए हो तुम लोग, कर क्या रहे हो, मेरे पिता को जल्दी ठीक करो, अगर मेरे पिता को कुछ भी हुआ तो मैं तुम लोगों के अस्पताल के खिलाफ कंप्लेन कर दूंगी, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी, समझे तुम लोग। ऐसा बोलकर डिंपल सभी को ध्रुव को बुरी तरह से डांटने लगी थी, लेकिन डिंपल का इस तरह से बदतमीजी से बोलना और साथ ही साथ जिस तरह से डिंपल ने कॉलेज के वैलेंटाइन फेस्टिवल में ध्रुव की बेइज्जती की थी, वो सारी बातें ध्रुव को याद आ गई थी और ध्रुव खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया और अचानक उसने तुरंत एक चांटा डिंपल के मुंह पर दे मारा था। या तो वो उसके वैलेंटाइन डे की फ्रस्ट्रेशन थी या फिर आज जिस तरह से डिंपल सभी डॉक्टर्स की बेइज्जती कर रही थी, सबको बुरा भला कह रही थी, क्योंकि डिंपल आज भी वैसी ही थी, बिल्कुल बदतमीज और सबानराज, तो इसीलिए जैसे उसने उसे चांटा मारा डिंपल एक तरफ झुक गई थी। वो भी वापस से ध्रुव को चांटा मारना चाहती थी, लेकिन तब तक बड़े डॉक्टर वहां आ गए। उन्होंने डिंपल का हाथ पकड़ लिया था और उसकी ओर देखकर बोले कि आप क्या कर रही हैं यहां, आप इस तरह से इन पर हाथ नहीं उठा सकती, आप जानती हैं कौन है ये, जानती हैं आपको नहीं है। ऐसा बोलकर डॉक्टर अब बारी बारी से डिंपल को डांटने लगे थे। वहीं डिंपल, जो कि लाल आंखों से ध्रुव की ओर ही देख रही थी, और घूरते हुए बोली कि इस दो कौड़ी के इंसान को भला मैं भूल कैसे सकती हूँ। अब जैसे ही डिंपल ने ये कहा, ध्रुव की आंखें हैरानी से फैल गई थी। उसे तो लगा था कि डिंपल ने उसे नहीं पहचाना, लेकिन जिस तरह से डिंपल उसके बारे में बात कर रही थी, ध्रुव हैरान था, तो वो समझ चुका था कि वो उसे पहली नज़र में ही पहचान चुकी है। तभी डॉक्टर उसकी ओर देखकर बोले कि ये क्या बकवास कर रही हो तुम, क्या तुम्हें इतना सा भी अंदाजा है तुम किन के बारे में बात कर रही हो। तभी डिंपल थोड़ा सा घमंडी अंदाज में बोली कि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये इंसान कौन है, ये वही इंसान है जो कॉलेज में मेरे पीछे आई लव यू कहकर घूमा करता था, लेकिन ये किसी काम का नहीं है, एक नंबर का यूजलेस है, ये पहले भी यूजलेस था, आज भी यूजलेस है, और मैं जानती हूँ कि आपके हॉस्पिटल में एक सफाई कर्मचारी का काम करता होगा, इसलिए तुम लोग इसे बचा रहे हो ना, हाँ, लेकिन याद रखना अगर किसी की वजह से भी मेरे पिता को कुछ हुआ तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। अब डिंपल की ओर देखकर उन लोगों को उस पर तरस आ रहा था कि कोई लड़की इतनी ज्यादा बदतमीज कैसे हो सकती है, कितना घमंड इस लड़की में कूट कूट कर भरा हुआ था और किस तरह से सीधा सीधा ध्रुव के बारे में बात कर रही थी, ये बात डॉक्टरों को हैरान कर गई थी। तभी ध्रुव ने डिंपल से उस वक्त कोई बात नहीं की और एक नज़र उन्होंने डॉक्टर की ओर देखा और फटाफट से वो ओटी रूम में चला गया, क्योंकि अगर वो डिंपल से बात करने में टाइम वेस्ट करता तो पक्का उसके पिता की सर्जरी में देर हो जाती और शायद उसके पिता नहीं बच पाते। वहीं डिंपल ध्रुव के जाने पर चीखते हुए बोली कि मेरे पिता को कुछ भी नहीं होना चाहिए, और कहाँ है वो स्पेशल सर्जन, वो क्यों नहीं आया, अभी तक उसे बुलाओ, मेरे पिता को सिर्फ उस स्पेशल सर्जन की ज़रूरत है। डिंपल जब अपने पिता को यहाँ से लेकर गई थी तब डॉक्टर ने उनकी रिपोर्ट्स और सारी चीज़ देखते हुए बता दिया था कि अगर इनका ट्रीटमेंट कोई कर सकता है तो वो सिर्फ स्पेशलिस्ट ध्रुव, जिनका मेडिकल लाइन में कितना नाम है ये सब लोग जानते थे। हालांकि डिंपल भी खुद एक डॉक्टर थी, लेकिन ना तो वो ज़्यादा फेमस डॉक्टर बन पाई, वो केवल एक मामूली सी डॉक्टर बनकर रह गई थी जो कि अब अपना छोटा मोटा क्लिनिक चला रही थी, और ध्रुव का नाम वो मेडिकल लाइन में अच्छी तरह से जानती थी, लेकिन उसने कभी भी नहीं सोचा था कि ये ध्रुव वो फेमस ध्रुव हो सकता है। उसके दिलो दिमाग पर तो बस अभी इस तरह इस बात का घमंड था कि इस ध्रुव ने उसे प्रपोज किया था, और आज भी डिंपल को ये लग रहा था कि अच्छा हुआ उसने उस वक्त ध्रुव को रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि आज भी ये ध्रुव क्या कर रहा है, यहाँ पर एक मामूली सफाई कर्मचारी बनाकर हॉस्पिटल में सफाई ही तो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी भी डिंपल को अपने डिसीजन पर काफी खुशी थी, लेकिन फिलहाल तो वो अपने पिता की ठीक होने की दुआएं करने लगी थी। वो जल्दी ही 5 से 6 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद सर्जरी कम्प्लीट कर दी थी, और जैसे ही वो बाहर आया तब उसने एक तिरछी सी नजर डिंपल पर डाली और वहां से जाने लगा। लेकिन तभी डिंपल ने उसे आवाज लगाकर रोक दिया था और बेरुखी से बोली कि कहाँ जा रहे हो, रुको तुम, एक बात बताओ, तुम 5 से 6 घंटे से ओटी के अंदर क्या कर रहे थे? हाँ, कितनी देर तक सफाई कर रहे थे तुम? हाँ, सफाई कर्मचारी हो ना, पूरे पूरे अस्पताल की सफाई तुम्हें करनी चाहिए। तुम इस तरह से एक ही रूम में क्या कर रहे थे? बोलो, और मेरे पिता कैसे हैं? बोलो, जवाब दो।